ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ પાંચમા અધ્યાય શ્લોક નંબર 8. શ્રી નારદ ઉવાચ ભવતા દુનોદિત પ્રાયમ યશો ભગવતો મલમ વાસુ ન તુષ્યેત મન્યે તદ્દર્શનમ ખિલમ. શ્રી નારદ ઉવાચ ભવતાનુદિત પ્રાયમ યશો ભવન ભવતાનુદિતમ પ્રાયમ યશો ભગવતો મલમ યેને વાસો ન તુષ્યેત મન્યે તદ્દર્શનમ ખિલમ. શ્રી નારદ ઉવાચ ભવતામુદિત પ્રાયમ યશો ભગવતો મલમ યેને વાસો ન તુષ્યેત મન્યે તદ્દર્શનમ ખિલમ.
એવા
अचेहि असो वे भगवान न नहीं तुष्येत प्रसन्न होते हैं मन्ये मैं सोचता हूँ तत् उस दर्शनम दर्शन को खिलम निम्न अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री नारद मुनि ने कहा, ये व्यासदेव को बोल रहे हैं, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रचार नहीं किया है। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वो व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीवन का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान और जीवात्मा दोनों को संतुष्टि की प्राप्ति हो सकती है। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ है। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान के महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति करना उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितना कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति से होता है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं वेद व्यास हैं, किंतु उनके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक और श्रोता उसमें कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत होती है कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत के रूप में करें। ओम ज्ञानति निरन्तस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतः पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है भगवान जगन्नाथ की कृपा से आप सब वैष्णव का सेवा का अवसर मिल रहा है। जब मैं बंबई से मथुरा जाता हूँ पश्चिम एक्सप्रेस से, रास्ते में वापी स्टेशन पड़ता है, तो कई बार मैं सोचता था यहाँ वापी में हमारा सेंटर है क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पता लगाना चाहिए, लेकिन कभी चांस नहीं मिला। लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में जब हरिद्वार में श्री परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा चल रही थी, तभी प्रियतम प्रभु जी मुझे मिले और हमारी दोस्ती हो गई। प्रभु जी ने हमें आमंत्रित किया कि आप आइए। मैंने मेरा फोन नंबर लिया, मैंने उनका फोन नंबर लिया, लेकिन दोनों भूल गए फोन करना। लेकिन भगवान जगन्नाथ दोनों के हृदय में रहते हैं, तो उन्होंने फोन नंबर फिर से मिला दिया। क्योंकि ये भगवान जगन्नाथ है, तलासिन जगन्नाथ है, दोनों का फोन नंबर एक ही है, 16 डिजिट का नंबर है। तो मैं तलासी में कल था, मैं बिहार विलास बिहारी को उनसे बात कर रहा था। एक्चुअली मुझे जाना था बम्बई, कार भी अरेंज हो गया, लेकिन मैं उनको बताया मेरे हेल्थ के कारण मुझे कार में जाना अच्छा नहीं है, ट्रेन से जाएंगे। मेरा प्लान था ट्रेन में जाने का कल शाम की शताब्दी से, भवन की दया से वो भी ट्रेन नहीं मिली। फिर मेरा प्लान था सुबह जाने का, लेकिन फिर शाश्वत प्रभु जी बोले कि आज सुबह क्लास लेके जाइए। ऐसे भगवान का लीला होता है। एक्चुअली हर चीज जो हो रहा है हमारे जीवन में सब भगवान कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये पता हो तो कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई चिंता नहीं, आप कहाँ जाओगे जहाँ कृष्ण चाहते हैं, क्या करोगे जो कृष्ण चाहते हैं वही होगा, धन कहाँ से आएगा जो कृष्ण चाहेंगे, प्रसाद में क्या होगा जो कृष्ण देंगे। अगर मैं सोचता हूँ कि प्रसाद में मुझे गोभी सब्जी चाहिए तो बैंगन होगा तो दुख होगा, और बैंगन चाहिए और गोभी होगा तो दुख होगा, लेकिन मेनू क्या होना चाहिए जो कृष्ण चाहेंगे तो हमेशा सुखी रहो। आपको सर्दी अच्छी लगती है, गर्मी अच्छी लगती है, जो कृष्ण चाहते हैं वही अच्छा लगता है। मारो भी राखो भी जो इच्छा त्योहार, नित्य दास प्रति वो अधिकार। जब प्रभुपाद का कल हम एक पर्पत पढ़ रहे थे कलाश्री भागवतम क्लास में, नारायण पर सर्वे न कुतश्य न बिव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यात् दर्शन। भगवान का भक्त होता है वो हर स्थिति में संतुष्ट रहता है, क्योंकि देखते हर चीज में भगवान का ही हाथ। तो सफलता भी भक्त के लिए, असफलता भी सफलता है, क्योंकि वो भगवान की योजना है। हरे कृष्ण मेला प्रभु जी भागवतम प्रवचन कर रहे हैं पिछले कितने 5 दिनों से, 4 दिनों से प्रभु जी बता रहे थे, अलग अलग पूरा भागवत कवर कर रहे हैं। चाहे 6ठा स्कंद भी होगा, कहाँ तक पहुंचे अभी?
प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले 1ले स्कंद का ही अनुवाद किया। और प्रभुपाद जी बोले कि ये 1ले स्कंद में सब कुछ दे दिया है मैंने, और कोई चीज की जरूरत नहीं, 1ले स्कंद में सब कुछ।
और जब आप आगे बढ़ेंगे, आपको मैं सजेस्ट करता हूँ जिनको फ्री समय है शाम को सुने कृष्ण मेला प्रभु जी से, तो 36 स्कंद में ये कथा आती है वृत्रासुर की, है ना। तो जब चित्रकेतु महाराज जा रहे होते हैं अपने विमान पर मुक्त अवस्था में, और भगवान शंकर जी बैठे हैं कथा कर रहे हैं और पार्वती उनके गोद में है, तो चित्रकेतु महाराज को हंसी आ जाती है कि क्या मजाक है भाई, ये कौन सा सेंटर है अभी, यहाँ पे स्पीकर अपने फैमिली के साथ बैठा है। तो स्वाभाविक था, लेकिन प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के मन में ईर्ष्या नहीं थी, वो ईर्ष्यावश नहीं बोल रहे थे, उनको लग रहा था कि लोग गलत समझेंगे शिव जी को। लेकिन जब उन्होंने ऐसा कमेंट किया तो शिव जी को बुरा नहीं लगा, शिव जी जानते थे कि किस भावना से बोल रहे हैं। शिव जी बस मंद मंद मुस्कुरा दिए, वैसे भी भोलेनाथ है, वो तो जहर पीने में को भी तैयार हैं, तो ये इंसल्ट की क्या बड़ी बात है। तो शिव जी के अनुयायी बैठे थे वो भी कुछ बोले नहीं, लेकिन पार्वती को गुस्सा आ गया कि तुम कौन होते हो, ब्रह्मा जी कुछ नहीं बोल रहे, 4 कुमार नहीं बोल रहे, कपिल नहीं बोल रहे, तुम क्या अपने आप को क्या समझते हो, जाओ तुम असुर बन जाओ। चित्र के तो महाराज भी पावरफुल थे, वो चाहते तो शाप का प्रति शाप दे सकते थे,
वो चाहते तो शाप को रोक सकते थे, लेकिन चित्रकेतु के तो महाराज ने बस प्रणाम किया, माता माँ कहकर संबोधित किया, बस धन्यवाद। और प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, एक भक्त का मतलब है जो भी स्थिति आ जाए धन्यवाद देते हुए स्वीकार करना। तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षा मानो भुंजान एवात्म कृताम विपाकम हृदवाग वपूर्वीर विदधान नमस्ते जीवेति मुक्ति पदे सदाए। जो हाथ जोड़कर भगवान को हृदय से वचन से मन से धन्यवाद देता है कि प्रभु ये आपकी अहेतु की कृपा है कि आप मुझे इस स्थिति में डाल रहे हैं, वो व्यक्ति मुक्ति पदे वो भगवान के धाम पहुंचने के योग्य बने। उसी संदर्भ में जब चित्रकेतु महाराज क्रोधित नहीं होते तब शिवजी पार्वती को बोलते हैं, हे सुंदरी, प्रभुपाद लिखते हैं शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को, तुम तो शरीर से सुंदर हो लेकिन भगवान के भक्त चित्रकेतु कैरेक्टर से सुंदर है। क्यों? क्योंकि इतने कड़वे शब्द तुमने बोले, तुमने उनको असुर योनि में भेज दिया और फिर भी वो कुछ जवाब नहीं दिया। ये एक वैष्णव की महानता है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में फर्स्ट कैंटो में, वन कैन नो द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। जब कोई कष्टदायक स्थिति आए, कठिनाई आए, कोई बेइज्जती हो, अपमानित हो, तो जो व्यक्ति सहन कर लेता है वो उसकी महानता है। भागवत के प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज को शाप मिलता है, परीक्षित महाराज की क्या गलती थी? तो बड़ी गलती नहीं थी, उन्होंने एक मरा हुआ सांप डाला, है ना, वो भी है ना, ये बात सही है कि उनको नहीं करना चाहिए था या, लेकिन भगवान की योग माया के अरेंजमेंट से हुआ। इसमें कोई बढ़िया था, ऐसा नहीं कोई जीवित सांप डाला हो, ऐसा नहीं किसी को जान से मारा हो, एक मरा हुआ सांप डाला। इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसको इतनी बड़ी सजा मिल जाए। सजा ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर कार्य के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, किसी ने पॉकेट चोरी किया हो तो उसको अगर बोले कि मृत्यु दंड दिया जाए तो ठीक नहीं। मैं पॉकेट चोर को सपोर्ट नहीं कर रहा लेकिन बता रहा हूँ कि नहीं था, आप सोचेंगे प्रभु जी शायद कोई माफिया गैंग के भाग में गए हैं ना, कलयुग में पता नहीं क्या क्या होता है ना। लेकिन सजा जो उसके अनुसार होनी चाहिए, जो उसकी गलती है, छोटी सी गलती के लिए इतना बड़ा। परीक्षित महाराज चाहते तो शाप को बदल सकते थे, प्रतिशाप, तुम बोलो सातवें दिन मृत्यु हो मेरी, मैं शाप देता हूँ तुम आज ही मर जाओ, बाद में देखेंगे क्या होता है, टॉलरेट कर ले। दो भक्तों में झगड़ा होता है तो जो व्यक्ति झुक जाता है, जो चुप हो जाता है, वो भगवान की कृपा को प्राप्त करता है, और जो अभिमानवश बोलता रहता है वो उसका भक्ति में पतन हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद वृत्रासुर की कहानी में बोलते हैं, इंद्र और वृत्रासुर की लड़ाई हो रही है और इंद्र अपनी गदा फेंकते हैं और वृत्रासुर पकड़ लेते हैं और वही गदा लेकर वृत्रासुर पर फेंक देते हैं, इंद्र पर फेंक देता है। इंद्र अपने हाथी के साथ पीछे 40 फीट पीछे जाके गिर जाते हैं। अब इंद्र क्या करे? तब वृत्रासुर बोलते हैं, इंद्र उठो उठो, घबराओ मत, वो गदा तो तुमने फेंकी बेकार निकली, वो गदा फेंकना ऐसा लगा जैसे कंजूस आदमी से डोनेशन मांगना। लेकिन अभी तुम वज्र है ना, जो विष्णु भगवान ने शक्ति प्रदान की है, वो चलाओ मेरे ऊपर, क्योंकि ये जो वज्र है ये निश्चिंत काम करेगा। आप मेरे को मारोगे मैं भगवत धाम जाऊंगा और तुम स्वर्ग के राजा बने रहना, बाय बाय हरी बोल। तो भगवान लिखते हैं तात्पर्य में कि एक्चुअली ये लड़ाई में विजयी कौन हुआ? वृत्रासुर, इंद्र नहीं। शरीर वृत्रासुर का शांत हुआ, शरीर भी एक्चुअली इंद्र ने नहीं मारा वृत्रासुर। ये लड़ाई करते करते क्या हुआ कि वृत्रासुर ने अपना मुंह इतना बड़ा कि इंद्र को खा गए अंदर, हाथी के साथ जैसे कोई गुलाब जामुन खा लेते हैं, ऐसे महाप्रसाद है गोविंद। फिर इंद्र अंदर ही अंदर, और वृत्रासुर क्या लगा भी लड़ाई खत्म हो गई, वो समाधि में चले गए। उन्होंने एक्चुअली तभी त्याग किया था, पहले त्याग कर दिया, वो समाधि में थे। फिर इंद्र अंदर से बाहर आ गए, अपने नारायण कवच के कारण उनकी रक्षा हुई थी, और बाहर आके फिर उन्होंने वृत्रासुर का गला काटना शुरू किया। वृत्रासुर तो ऑलरेडी वो बैक टू वर्ल्ड चले गए थे, उन्होंने खाली वो उनका मृत शरीर जो है या समाधिस्थ शरीर था वो इतना स्टिफ हो गया, जब कोई मर जाता है तो तो बॉडी कड़क होने लगता है धीरे धीरे, जल्दी स्मशान घाट में ले जाते। तो 365 दिन लगे उनको उसका गला काटने। anyway, मेरे को टॉपिक याद आ गया क्योंकि कल मैं फार्म पे इस पर प्रवचन कर रहा था। शास्त्री प्रभु जी बहुत मुझे निवेदन कर रहे थे कि आप यहाँ पर थोड़े दिन और रुक जाओ, लेकिन अभी तो मेरी थोड़ा आगे के प्लान है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक दो महीने बाद दो तीन तीन दिन के लिए आऊंगा। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ का वातावरण मुझे बहुत अच्छा लगा, एक छोटा सा सेंटर है, छोटा परिवार सुखी परिवार। जनरली बड़े बड़े सेंटर में प्रॉब्लम भी बड़े होते हैं। मैं मैनेजमेंट में नहीं हूँ लेकिन सब मैनेजमेंट देखता रहता हूँ तो सब पता चल जाता है। जब आप किसी समस्या को बाहर से देखते हो तो बहुत अलग ही दृष्टि होती है, जब आप उस समस्या के बीच में होते हो तो आपकी दृष्टि कवर हो जाती है क्योंकि आप मेरा और तुम्हारा ये देखते हो, लेकिन जब निष्पक्ष होता है व्यक्ति वो देख सकता है कि क्या चल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी कि इतने छोटा सा सेंटर है, खाली चार ब्रह्मचारी हैं, है ना, चार ना, चार कुमार, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, और थोड़े से गृहस्थ डिवोटीज आ रहे हैं। फिर भी मैंने देखा करीब छह गृहस्थ डिवोटी सुबह मंगल आरती में थे। ये बहुत अच्छा सेंटर, अच्छा एग्जाम्पल है। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इतने भव्य रूप से इनकी सेवा हो रही है, और आज विशेष बरसात भी हुई, भगवान जगन्नाथ बहुत बहुत मतलब प्रसन्न है यहाँ की सेवाओं से, इज वेरी हैप्पी। हर एक चीज क्वालिटी पे देखना चाहिए, क्वांटिटी से नहीं। अगर एक 10 किलो कांच के टुकड़े से क्या फायदा, 100 ग्राम हीरा 100 ग्राम सोना मिल जाए वो ज्यादा है, लेकिन तो क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें। हमें भक्त ज्यादा नहीं आ जाए तो अच्छा ज्यादा, लेकिन जितने भी भक्त हैं वो क्वालिटी में अच्छे हो, ये साधना बहुत अच्छी हो। अभी मैं ऊपर शिला गोपाल कृष्ण महाराज की लिखी हुई किताब पढ़ रहा था ना ऊपर, पर्ल्स विजडम, उसमें गोपाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि अटेंटिव चैंटिंग से सब सद्गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करता है तो उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते जैसे अस्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वे गुणे समासत सुर हराव भक्त से कुतो महद्गुण। कि जो भगवान हरि का भक्त है उसके अंदर सारे गुण आ जाते, और नहीं तो हरि की भक्ति नहीं है तो उसके सारे गुण जो है वो क्या है, एक मृत शरीर को सजाने के बराबर है। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि सारे भक्त मिलकर जप करते हैं, कुछ कुछ को सेवा होती है तो उठना पड़ता है, लेकिन अगर हम ये संकल्प करें कि हम रोज सवेरे ही जप करें भक्तों के संग में तो बहुत लाभकारी है। तो आज के श्लोक में यहाँ पर नारद मुनि व्यासदेव के एनालाइज कर रहे हैं। व्यासदेव बैठे हैं बद्रिकाश्रम में, आप में से कितने भक्त गए हैं बद्रिकाश्रम, नहीं गए, मे बी किसी समय आप चलना मेरे साथ में, अभी तो थोड़े दिनों के लिए रास्ता बंद है, शायद केदारनाथ का बंद है, बद्रीनाथ का पता नहीं, तो रिस्की भी है, नहीं तो बद्रीनाथ जगह बहुत सुंदर है, और वहां पर एक जगह इसको व्यास गुफा बोलते हैं, जहां पर बैठकर व्यास देव ने सारे शास्त्रों का संकलन किया, एक वेद को चार वेद में विभाजित किया, 18 पुराण लिखे, लेकिन ये सब करने के बाद भी व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे, उनके मन में कमी महसूस हो रही थी, और उस समय भगवान के अरेंजमेंट से श्री नारद मुनि ने प्रवेश किया। कल के श्लोक में हमने पढ़ा कि कैसे नारद मुनि व्यासदेव नारद मुनि का गुणगान करते हैं, शिष्य का कर्तव्य है गुरु का गुणगान करना, उनका आदर करना और फिर उनसे प्रश्न पूछना। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्व दर्शन। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि एक सद्गुरु के पास जाओ, नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो, पहले प्रणिपाते न और सेवा और फिर प्रश्न, और प्रश्न क्या पूछो, आध्यात्मिक विषय के बारे में। एक बार एक शिष्य गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी मैं अभी मेरा एक छोटा बच्चा हुए वो दिन में सो जाते हैं और रात में उठ जाते हैं तो मैं क्या करूं। तो गुरु जी बोले मैं क्या करूं इसमें, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। कई बार लोग पारिवारिक समस्या के लिए गुरु जी के पास जाते हैं ना, गुरु जी मेरे बच्चे एग्जाम में पास हो जाए, मेरा डायमंड का बिजनेस है, यू नो वो वो अच्छा हो जाए, उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, तो गुरु जी को इसके लिए यूज नहीं करना चाहिए, भौतिक कार्यों के लिए नहीं। अगर आप सर्जन है जो एक दिन ऑपरेशन करने का 1,00,000 रुपए लेते हैं, उसको आप जाके मोची का काम करने को बोलोगे ठीक नहीं होगा। मोची भी सिलाई करता है, सर्जन भी सिलाई करता है, लेकिन मोची मृत शरीर की जो चमड़ी की सिलाई करता है, और सर्जन जो है जो व्यक्ति इसके प्राण है उसके ऑपरेशन से प्राणों को बचा रहे। तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए आध्यात्मिक जिज्ञासा, या आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो जिज्ञासा करनी चाहिए, और कोई समस्या आ रही है तो जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कई बार कई डिवोटी सोचते हैं ओ गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, मेरे मन में प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं वो अपने आप ही समझ लेंगे। नहीं, ऐसा अगर आप करोगे तो फिर एक समय आएगा कि आप भक्ति छोड़ के चले जाओगे। इसीलिए इस्कॉन में कितने सारे भक्त हैं जो भक्ति छोड़कर चले जाते हैं। प्रभुपाद के समय भी जब कोई एक भक्त और सीनियर सन्यासी कोई चले गए तो प्रभुपाद जी से पूछा इसका क्या कारण है, तो प्रभुपाद जी बोले डू नॉट बी सरप्राइज्ड एट हु लीव्स, बी सरप्राइज्ड एट हु स्टेज। कोई अगर छोड़ के जाता तो आश्चर्य की बात नहीं है, कोई टिका रहता है वो आश्चर्य की बात, नॉट आउट रहना बहुत मुश्किल है। शोभित प्रभु आपको मालूम है नॉट आउट का मीनिंग क्या है? नहीं, नॉट आउट क्रिकेट में नॉट आउट का मतलब क्या होता है? हाँ यस, अभी बहुत खुशी होगी सुन के क्रिकेट का नाम। मैं आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जागृत कर रहा था ना। मैं भी आपकी तरह जब आपकी एज का था तो बहुत सुनता। इनफैक्ट 1976 में मैं पहले राधा रास बिहारी मंदिर में आया, तो राधा रास बिहारी मंदिर एक छोटा सा टिन शेड था बस, जैसे बस राधा रास बिहारी ड्यूटीज थे, इतना ही साइज था टेम्पल कमरे का, और बाहर कुछ कुर्सियां रखे हुए थे गेस्ट के लिए, और दूसरी तरफ किचन था। तो जब मैं पहली बार आया तो एक्चुअली मैं थोड़ा भगवान की खोज में था, तो मैंने एक मंदिर में जाता था महानुभव पंथ, महानुभव पंथ महाराष्ट्र में, तो सुबह मैं जाता था महानुभव पंथ, दोपहर को रामकृष्ण मिशन, शाम को चिन्मया मिशन। मुझे पता नहीं था भगवान कहाँ मिलने, किसी मंदिर में मुझे बैक टू गॉड मैगजीन मिली, तो उसमें एड्रेस देखा हरे कृष्णा लैंड गांधी ग्राम रोड जुहू बॉम्बे 400049। तो मैं मैगजीन लेके गया फिर। तो फिर कुछ दिनों बाद भक्तों ने बोला प्रभुपाद आने वाले हैं। बोले प्रभुपाद कौन है? बोले हमारे फाउंडर अच्छा है। ठीक है, तो उस समय क्रिकेट मैच चल रहा था तो मैं जेब में रेडियो लेकर गया था क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, अवेयर थे काल होंगे ना, तो मैं लेकर गया था। एनीवे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल से जो एग्जाम्पल्स जो हमको समझ में आते हैं ना वो ध्यान में हमेशा रहते हैं। हालांकि क्रिकेट अच्छी चीज नहीं है, मैं भी नहीं खेलता, सुनता भी नहीं हूं, लेकिन इसका उदाहरण ये है कि क्रिकेट में जब फास्ट बॉलिंग होती है या स्पिन बॉलिंग होती है तो कोई बैट्समैन बचता नहीं है, सब आउट हो जाते हैं, लेकिन कोई 10 में, कोई 40 में, ज्यादा ज्यादा 50 स्कोर में। ऐसे ही भक्ति में जो माया की बॉलिंग है बहुत फास्ट है, कोई बचता नहीं है, लेकिन वही बचता है कौन? जो देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य। माया क्या है? फास्ट बॉलर है, उसको पार करना बड़ा मुश्किल, लेकिन मामे वो ये प्रपद्यंते, जो कृष्ण के शरण में आता है वो नॉट आउट रहता है, हर समय कृष्ण का नाम। इसलिए सुबह उठ के 16 माला जप करना, कृष्ण की शरण लेना मतलब क्या है? ना बोलो कृष्ण की शरण में हमेशा ऑल्टर के पास रहूंगा वो तो संभव नहीं है, न भगवान डीटी के चरण पकड़ के बैठा रहूंगा वो भी संभव नहीं है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत उद्धार। चलो गौर गोविंद महाराज आप तो उड़ीसा से है ना, आपने सुना था उनका नाम, वो बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं इसमें उड़ीसा ओड़िया स्टाइल में है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत उद्धार। बहुत पावरफुल प्रीचिंग करते, तो उसमें बोल रहे थे कि कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में आए। प्रभुपाद के पास जब कोई डिवोटी जाते हैं कोई समस्या लेकर, तो प्रभुपाद समस्या का पूरा सुनने से पहले ही बोलते हैं मैं इसका आंसर बताता, प्रॉब्लम बताने से पहले सोल्यूशन, वो क्या? चैंट हरे कृष्ण। क्योंकि हरे कृष्णा जब अगर अच्छा हो रहे तो कोई समस्या ही नहीं होगी। इसलिए हमारे आंदोलन का नाम है हरे कृष्णा आंदोलन। अभी इस्कॉन में जहां जहां पे भक्त सुबह उठ के जप करते हैं ध्यान पूर्वक, वहां पे समस्या नहीं होती या कम होती। लेकिन जहां पर कई बार लोग साधना छोड़ देते हैं, सोचते हैं अरे ये थोड़ा सुबह घूमने चले जाएंगे, कई बार लोग जू बीच पे चलते चलते जप करते हैं, थोड़ा जप कर रहे हैं, थोड़ा मछली देख रहे हैं और थोड़ा इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, तो फिर उसका ज्यादा फायदा नहीं होता। अगर किसी को स्वास्थ्य की समस्या है उस कारण चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो एक ही स्थान पर बैठकर जप करना, प्रार्थना करते हुए। जप जो है, जप एक बहुत गहरी चीज है। जप का मतलब है परमात्मा से बातचीत करना, परमात्मा के साथ हमारा इंटरव्यू है। जैसे आपको मालूम पड़े कि समझो आपको प्राइम मिनिस्टर से वार्तालाप करने का अवसर मिल रहा है, इस्कॉन के लिए कुछ डोनेशन मांगने जा रहे हैं, या ऐसे ही किसी परिचित व्यक्ति ने बोला है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टेक्ट है, आपको बात करवाता हूं, तो आप कितना ध्यानपूर्वक रहोगे। समझो अपॉइंटमेंट सुबह 9 बजे है, तो कितने बजे आप पहुंचोगे वहां पर, 9:30 बजे या 9:45 बजे? आप 8 बजे ही पहुंच जाओगे, 8:30 बजे ही पहुंच जाओगे, और आप बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। क्या नाम है उसका, मनमोहन ना प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? हाँ, किसी का मन तो मोहता नहीं है लेकिन नाम मनमोहन है। तो ये असली मनमोहन तो भगवान कृष्ण है, नहीं वही सबके मन को मोह सकते हैं। तो भगवान जगन्नाथ या भगवान कृष्ण से हमारा अपॉइंटमेंट है। ये 2 घंटे जो जप के हैं, मैं और भगवान, बस इसके बीच में अब कोई नहीं है। अगर आपको मेयर से या प्राइम मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट है, आप उसके सामने टेबल पे बैठे आमने सामने, तो आप घर के बारे में नहीं सोच रहे, आप सोच रहे अभी मुझे इससे क्या बात करना है और वो क्या बोल रहा है और मैं क्या बोल रहा हूं, उस पर फोकस्ड है। जैसे जप करने का मतलब है आप भगवान राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ या राधा गिरधारी या जगन्नाथ से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। और ये बात अगर आपको पता होगी तो आपका जप बिल्कुल अटेंटिव होगा, केंद्रित होगा कि मेरा हर एक शब्द भगवान सुन रहे हैं। और आप जल्दी में नहीं करेंगे, कई बार हम बहुत जल्दी में जप करते हैं ना, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, 7:15 बजे दर्शनार्थी, अभी 15 मिनट बचे और 3 माला है, हरे राम हरे राम राम, इससे कार का गियर बदली कर जल्दी कर, हरे राम राम पूरा हो जाना चाहिए ना। कई बार भक्त माला होने के बाद बहुत खुश होते हैं, वो फीडबैक करते हैं मैं मुक्त हो गया, जब से मुक्त हो गया, अभी कल तक फीडबैक को लॉक करके रख दिए है ना। प्रभुपाद से पूछा किसी भक्त ने कि प्रभुपाद कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा जप अच्छा हुआ है आज, तो प्रभुपाद जी बोले जब 16 माला होने के बाद आप कहोगे सिर्फ 16 माला क्यों, क्यों ना 16,000 माला, ऐसा क्वालिटी जप होना चाहिए। क्वालिटी जप यानी भगवान के लिए रोना, भगवान के लिए पुकारना, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, हे कृष्णा करुणा के सिंधु। चलो गौर गोविंद महाराज ने भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर बनाया है, आपने देखा है पुरी, पुरी के जाते थे भुवनेश्वर, तो वहां पे वो लिखते हैं आई ओपेंड अ क्राइंग स्कूल, मैंने एक स्कूल खोला है, पाठशाला खोली है कि भगवान के लिए कैसे रोना है। प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं हरे कृष्णा मंत्र के बारे में, एक 10 मिनट का लेक्चर है, आपने देखा है हम सब कैसेट्स में भी डालते हैं, वो बोलते हैं वन शुड क्राई आउट लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर, क्या बोलते हैं प्रभुपाद, जैसे एक छोटा बच्चा किसके लिए रोता है, माँ के लिए, मदर हरा, राधा रानी मदर है, कृष्ण पिता है। जब बच्चा रोता है तो माँ ये नहीं देखती कि कौन से राग में रो रहा है वो, नहीं माँ ये देखती है कि सच्चे की रो रहा है, बस दौड़ते हुए आ जाते। तो जब तक हम भगवान के लिए रोएंगे नहीं तो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। चाहे आप कितना 10 लाख डोनेशन दे दिए, आपने 108 प्रवचन कर दिए, भागवत सप्ताह कर दिया, या मेरी तरह पूरे भारत में भ्रमण भी कर लिया हो, भगवान की प्राप्ति इन चीजों से नहीं होती। ये चीजें करनी चाहिए लेकिन इनके साथ साथ नाम के प्रति अनुराग जागृत होना चाहिए। जितना आपका नाम से प्रेम है उतना समझ है कि आप भगवान के करीब आ रहे हैं। और यही बात आज नारद मुनि व्यासदेव को बोल रहे हैं कि तुमने इतने सारे शास्त्र लिख दिए लेकिन डायरेक्टली भगवान का गुणगान नहीं किया, क्या फायदा हुआ। आप रेस्टोरेंट में गए, पूरा देखा, चेयर देखा, बैठ के आए और प्लेट खा के नहीं आए, क्या फायदा हुआ। आप हॉस्पिटल में गए, देखा वहां के कैंटीन में घूम के आ गए और बगीचे में घूम लिए, डॉक्टर से मिले लेकिन दवाई नहीं ली, तो क्या फायदा। तो ये कृष्ण कथा है, ये दवाई है, औषधि शोत मनोविराम, ये भव औषधि है, निवृत्त तरशेर उपगीय मान, ये निवृत्त व्यक्ति के लिए, एक्चुअली भागवत लिबरेटेड व्यक्ति के लिए, मुक्त पुरुष के लिए। लेकिन जो मुक्त नहीं भी है, अगर वो भागवत का श्रवण करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ये भागवत है सबके लिए, अकाम सर्व काम मोक्ष काम, जो व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, भागवत सबको शुद्ध बनाने। और यहां पर हम देख रहे हैं कि आज के श्लोक में नारद मुनि व्यास देव को बोल रहे हैं कि तुमने भगवान की महिमा का प्रचार नहीं किया, तुमने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया है लेकिन भगवान की महिमा के बारे में नहीं लिखा। इसी के बाद फिर व्यासदेव भागवत ग्रंथ की रचना करने लगते हैं। तो भागवत जो है अमल पुराण बताया गया, अमल, बाकी सब पुराणों में थोड़ी सी कंटेमिनेशन रजोगुण तमोगुण है, क्योंकि दूसरे पुराण जो है वो उस अलग अलग गुणों के स्तर पर जो लोग हैं उनके लिए लिखे गए हैं, लेकिन भागवत है सबसे ऊंचे लेवल व्यक्ति के लिए, परमहंस संहिता बोला गया इसको। धर्म प्रोजिता कैतव तर परमो निर्मत्सरानाम सताम, ये धर्म प्रोजिता, जो ये क्या करता है, जो बाकी सब चीजें हैं भौतिक चीजों को प्रोउज्जित, उज्जित यानी फेंक देना, प्रोउज्जित यानी निश्चित रूप से फेंक देना। क्या फेंक देना? धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक वांछाएं सब त्याग देना। और भागवत क्या सिखाते हैं? कृष्ण भक्ति, डायरेक्ट कृष्ण प्रेम। भागवत का हरेक शब्द जो है वो भगवान से अभिन्न है, स्वादु पदे पदे, हर स्टेप पर नए नए रसों का आस्वादन होता है। यही भागवत है जो सबसे पहले भगवान ने प्रदान किया ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, सब ब्रह्मा जी इसको भगवान को, चतुश्लोक भागवतम। फिर उसके बाद अलग अलग तरीके से व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी से सूत गोस्वामी, सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि, इतनी जगह पर भागवत प्रकट होता। तो हमारा सौभाग्य है कि कृष्ण मेधा प्रभु जी यहाँ पर वापी में भागवत की बरसात कर रहे हैं और सबको भौतिक दुनिया की गर्मी से दूर कर रहे हैं। दो दो बरसात एक साथ हो रहे हैं, ये बरसात हो रही है, प्रभु जी भागवत का 15 दिन कथा करके सब जीवों के दुखों को दूर कर रहे हैं। को अमल पुराण बोला गया। और ये भागवत का निष्कर्ष क्या है, लास्ट श्लोक क्या है भागवत का, 12वें स्कंद के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? यस, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप तम नमामि दुःखम तम नमामि हरिम परम। ये भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन ही सब कुछ। 11वें स्कंद में, ये 11वें स्कंद 12वें में, कलेर दोषे निधि राजन अस्थिरे को महान गुण कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजे। ये कलयुग यह दोषों की निधि है, लेकिन कीर्तन का आश्रय, नाम का आश्रय लेने से व्यक्ति सब दुखों से मुक्त है, सब दोषों से मुक्त है। हम पूरे समाज को नहीं बदल सकते, यहाँ पे भारत की आबादी इतनी करोड़ों है। अभी मैं कुछ दिनों दिल्ली में था, दिल्ली में तो बस इतनी शहर फैला हुआ, इतने सड़क में इतनी भीड़, मेट्रो ट्रेन बस एयरपोर्ट सब फुल है। भारत रेलवे का इतनी कृपा है कि हर समय कोई भी आप लॉग ऑन करो, हर ट्रेन में सब सीट्स फुल हो जाते हैं, इतने लोग ट्रेवल करते हैं, इतनी भीड़ है। ये लोगों का सबको नहीं बदल सकते, लेकिन अगर एक कुछ परसेंटेज पॉपुलेशन भी बदल जाए तो एक क्रांति पैदा हो जाए समाज में, नहीं तो और कोई सोल्यूशन नहीं। समाज को परिवर्तन करना है तो ये कृष्ण कथा और कृष्ण नाम यही है, नहीं तो आप हॉस्पिटल खोल लो, लोगों को एजुकेशन कर दो कि बुरे काम नहीं करने चाहिए, लेकिन जब तक इंद्रियों को एक ऊंचा रस नहीं मिलेगा तब तक वो विषय को त्याग नहीं कर सकते। परम दृष्टवा निवर्तते, इसको ज्यादा अच्छी चीज मिलेगी तो वो निम्न श्रेणी की चीज को त्याग कर सकते। जैसे मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है तो रस्ते में एक सूखी रोटी भी दिखती है तो मैं तुरंत ग्रहण कर लूंगा, लेकिन बाद में अगर कोई बताता है मुझे प्रभु जी यहाँ पे गरम गरम राइस दाल सब्जी और स्वीट है, आप ग्रहण करिए, तो फिर मैं सूखी रोटी को त्याग कर सकता। इस संसार में लोग भूखे हैं तो कुछ भी नहीं है, जो इंद्र तृप्ति है भौतिक है उसी में सुखी हो रहे हैं। कई बार लोग जानते भी हैं कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन त्याग नहीं कर सकते। लेकिन जिसको ऊंचा रस मिलता है भगवत भक्ति का, परम दृष्टवा निवर्तते, तो परम भक्ति का जब रस मिलता है तब फिर निम्न चीजों को त्याग देते हैं। हमें भगवान के नाम में रस मिलना चाहिए। वो रस कैसे मिलेगा? वही एक सबसे बड़ा प्रश्न है। वही अगर इस समस्या का हल हो जाए तो इस्कॉन में इतनी समस्याएं सब हल हो जाए। वो रस कैसे मिले? वो रस मिलता है जब हम ये भाव को स्वीकार करते। श्रीमन महाप्रभु, गौरंग महाप्रभु जो स्वयं जगन्नाथ से अभिन्न है, वो जगन्नाथपुरी में रहते थे। और गंभीरा, आपने देखा जगन्नाथपुरी गंभीरा, वो छोटे से कमरे में रहते थे और उस गंभीरा कमरे में रहकर उन्होंने शिक्षाष्टकम श्लोक बोले। महाप्रभु के लिखे हुए और कोई चीजें उपलब्ध नहीं है, सिर्फ 8 श्लोक है डायरेक्ट जो भगवान ने लिखे। और इन श्लोकों में वो भगवत भक्ति का सार प्रकट करते हैं, एसेंस, गागर में सागर। और वो बताते हैं सब श्लोकों में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णु न अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तिनके से भी तुच्छ मान। जैसे अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं तो हमें अभिमान हो जाता है, देखो मैं कितना सीनियर, मैं कितना अच्छा प्रवचन कर रहा हूं। लेकिन ये भक्त का लक्षण नहीं है। सच्चा भक्त है वो अपने आप को इतना तुच्छ मानता है, बोलते मैं तो अयोग्य हूं, मेरी कोई पात्रता नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है कि मेरे ऐसे मूर्ख को भी अपनी सेवा में लगा रहे। जितना हम अपने आप को अयोग्य मानेंगे उतना हम भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। जितना हम सोचेंगे मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं तो भगवान की कृपा के लिए योग्य नहीं रहेंगे। मैं कल उदाहरण बता रहा था कि जैसे इस मटेरियल वर्ल्ड में कभी कॉलेज में विद्यालयों में कई विद्यार्थी स्कॉलरशिप चाहते हैं, आर्थिक सहायता चाहते हैं, तो जो आर्थिक सहायता उन विद्यार्थियों को मिलते हैं कि जिनके पिताजी की तनख्वाह बहुत कम होती है कि नहीं, या ज्यादा भी हो तो कम लिखते हैं अगर, ये चलता रहता है मटेरियल वर्ल्ड में। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का एक रहस्य है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरिता में पटपट बताते हैं कि कैसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा ज्यादा मिल सकती है। मैं अभी बताऊं या मैं नवंबर में आने वाला हूं तभी बताऊं? अभी बताऊं कि अभी बताना चाहिए क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा, प्रभुपाद के शब्द है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, द मोर फॉलन वन इज द मोर हिज क्लेम टू रिसीव द मर्सी ऑफ चैतन्य महाप्रभु। जितना ज्यादा कोई व्यक्ति पतित है उतना उसको अधिकार है भगवान गौरंग की कृपा को प्राप्त करने। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझ के पतित बन जाओ, लेकिन अपने आप को पतित मानना चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा है चैतन्य चरितामृत, और वो अपने बारे में क्या कहते हैं, मैं जगाई और मदाई से ज्यादा पतित, जो मेरा नाम लेगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और जो मेरा नाम सुनेगा वो पापी बन जाए। इसका मतलब ये नहीं प्रभु जी आप बोले जगाई मदाई से पतित बनना ठीक है, जगाई मदाई ने तो पता नहीं कितने लोगों को मारा, मैं एक दो को मार के आता हूं फिर, नहीं ऐसा नहीं। हमें अच्छा व्यवहार करना है, बहुत परफेक्ट वैष्णव बनना है, लेकिन मन में सोचना है जगाई मदाई से पतित। ये पैराडॉक्स है, ये विरोधाभास है। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, आपको बनना है रूप सनातन की तरह, लेकिन सोचना है कि मैं जगाई मदाई की तरह। आपको बनना है अच्छा स्टूडेंट और सोचना है कि मैं सबसे डफर स्टूडेंट हूं, ये कैसे हो सकता है? ये अचिंत्य है, ये नम्रता का गुण है, अचिंत्य है, भौतिक बुद्धि से परे है। उत्तम है आपने अधम करी माने, एकदम उत्तम कैरेक्टर का व्यक्ति होने पर भी अपने आप को बहुत ही तुच्छ मानना। इसे प्रभुपाद इतने महान संत है, पूरे विश्व में प्रचार किए, और वो क्या लिखते हैं अपनी कविता में, भक्ति नाही वेद नाही नामे खूब दारो, भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो। मेरे अंदर भक्ति नहीं है, मेरे अंदर ज्ञान ही नहीं है, बस मेरे को नाम में श्रद्धा है, मैं अयोग्य हूं। ये कविता प्रभुपाद ने अमेरिका में लिखी जब बॉस्टन में पहुंचे, नए शहर में, नए देश में, कोई परिचित नहीं, कोई पैसे नहीं। मैं भी अमेरिका गया था 25 साल पहले अज्ञान एकत्र करने के लिए, कॉलेज में पढ़ने तथा कथित पढ़ाई के लिए। लेकिन वहां पे मेरे मित्र थे, कोई था मेरे को पैसे मदद करने के लिए, कॉलेज से स्कॉलरशिप थी। प्रभुपाद के पास कोई गारंटी नहीं थी कि अगले महीने का जो किराया है कौन देगा, रहने की जगह भी नहीं थी पहले। लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरे को आप इस उग्र स्थान में लेकर आ गए, पता नहीं आपकी क्या योजना है, क्योंकि न्यूयॉर्क, बॉस्टन, ये सब बड़े बड़े इमारतें 50-60 माले की बिल्डिंग, वापी भी उसी परंपरा में आ रहे हैं। अभी मैं देख रहा हूँ, नहीं पिछले 4-5 सालों में वापी में बहुत परिवर्तन हो गया, तो ये भी उग्र स्थान बन रहे हैं। नहीं, जैसे हम प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे सुगंधित चीजें, सुगंध आने लगती है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी प्रचार की बहुत जरूरत है। नहीं, जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कलयुग ज्यादा बढ़ रहा है, इसीलिए इस्कॉन को वहाँ और पावरफुल होना जरूरी है, प्रचार की जरूरत है। कभी कभी लगता है कि इतना छोटी सी जगह है, हम इतने कम भक्त हैं, चलो हम भी सब कुछ छोड़कर वापस मीरा रोड या बम्बई चले जाएं। लेकिन हम देखते हैं जरूरत बहुत है। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं वहां पर सेवा करने में ज्यादा लाभ है जहां पर जरूरत ज्यादा है। ये कहानी है कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में एक बार राधा और कृष्ण का मिलन होता है। आप जानते हैं भगवान कृष्ण 11 साल बाद वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, फिर मथुरा के द्वारका चले गए, फिर लौट कर नहीं आए करीब 100 साल तक। ब्रजवासी रो रो कर जमीन पर गिर पड़ते, दुखी थे, मृत प्राय थे, मरे हुए समान थे। लेकिन बाद में सूर्य ग्रहण हुआ और सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान कृष्ण वृंदावन से कुरुक्षेत्र आए और सारे द्वारकावासी वो भी आए कुरुक्षेत्र। बड़ा प्रेम का मिलन था। आप सोचिए कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ आए। कृष्ण का परिवार छोटा नहीं है, 16,108 पत्नियां और हरेक से 10 पुत्र। कितना हो गया टोटल? 1,60,000। बात रे, कैसे नाम भी याद करेंगे? नहीं, 80 है ना, 80,506 इधर आ जाओ, है ना। कैसे नाम पता नहीं, कृष्ण याद कर सकते। और कृष्ण परफेक्टली सेटिस्फाइड करते थे अपने पत्नियों को भी। जहां तक मैंने सुना है कलयुग में एक पत्नी से भी संतुष्ट रहना चैलेंज होता है, इतना इजी नहीं होता। लेकिन भगवान के सबको संतुष्ट करते, सारे परिवार समेत आए। और यहाँ पर आप कभी कुरुक्षेत्र गए हैं? कभी कुरुक्षेत्र में वो जगह है जहां पर राधा और कृष्ण का मिलन हुआ। तब राधा रानी ने कृष्ण को देखा, अरे ये तो वही कृष्ण है, ये वही मेरे प्राणनाथ है। लेकिन यहाँ पर वो मुरली वदन नहीं है, मोर का पंख नहीं है, यहाँ पर कृष्ण के तो सोने के आभूषण है, यहाँ पर घोड़ों की आवाज है, रथों की आवाज है, हाथियों की आवाज है, और वृंदावन में मोर की आवाज है, पक्षियों की आवाज। तो भी मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर भी कभी कभी मोर की आवाज सुनाई पड़ती है इस इलाके में, थोड़ा था, थोड़ी एक आधे किलोमीटर की दूरी पे। पहले तो ये सब इलाका भी वैसा ही था, अभी तो बिल्डिंग्स में सब जंगलों को नष्ट किया जा रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य नष्ट हो रहा है। यानी वे तो राधा रानी मन ही मन सोचते हैं कि मैं कृष्ण को वापस वृंदावन ले जाना चाहती हूँ, और अपने मन ही मन वो रथ बनाते हैं। और कृष्ण अकेले नहीं आना चाहेंगे, उनके बड़े भैया दाऊ जी और बहन सुभद्रा के साथ सुंदर रथ पर स्थापित करके उनको ले जा रहे हैं वृंदावन। और यही रथ यात्रा का उद्गम है। मानसिक रथ यात्रा तभी से ही शुरू हुई जब राधा रानी और गोपियां कुरुक्षेत्र में भगवान से करीब 100 साल के बाद मिल रहे हैं। आप सोचिए आपके परम मित्र को आप 100 साल साथ मिल रहे, कैसे लग रहा होगा? और वो बड़े प्रेम से रस्सियां खींच रहे हैं और कृष्ण को वापस अपने घर वृंदावन ले जा रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कुरुक्षेत्र, मैं अपना शरीर कुरुक्षेत्र में त्यागना चाहता हूं, क्योंकि यहां पर राधा रानी को सेवा की बहुत जरूरत है। तो जहां सेवा की जरूरत है वहीं पर सेवा करने में ज्यादा लाभ है। अभी मैं सभी सेंटर में जरूरत है, जुहू में भी जरूरत है, चौपाटी में जरूरत है, गिरधारी में भी, सूरत में भी, लेकिन यहां पर वापी में भक्तों की कमी है, तो यहां पर सेवा की बहुत जरूरत है। इसीलिए जो भक्त यहां पर रह रहे हैं बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लगता है कि कई सुविधाएं होते हैं जो छोटे सेंटर में नहीं मिलते, लेकिन कृपा ज्यादा मिलती है। हमें सुविधाएं कम भी मिले, हमें कृपा चाहिए, भगवान किसमें खुश होंगे? गोपियों को बोला गया कि भगवान को सरदर्द हो रहा है और उनके सरदर्द के लिए एक ही दवाई है, वो क्या है? कृष्ण के सरदर्द के लिए क्रोसिन काम नहीं करता, क्रोसिन, माइसिन, योरसिन, ये नहीं। कृष्ण के सर दर्द को दूर करना है तो भक्तों की चरणों की धूल, और सारे कोई भक्त चरण की धूल देने को तैयार नहीं होते। कृष्ण को चरण की धूल देना मतलब नरक में रहना। गोपियां बोलते हैं तुरंत ले जाओ, हो इससे जितना चाहिए ले जाओ, आपको पता है क्या फल होगा, हम नरक में जाएंगे कोई बात नहीं। अगर कृष्ण का सर दर्द एक सक्षण के लिए भी कम होता है और हमको शाश्वत रूप से नरक में जाना पड़े तो वो भी हमें मंजूर है और वो उसके लिए तैयार हो। तो ये चेतना है कि भगवान को प्रसन्नता किसमें हो रही है, मुझे भगवान मेरी सेवा कहां पर चाहते हैं, वो नरक में चाहते हैं, स्वर्ग में चाहते हैं, मुंबई में चाहते हैं कि न्यूयॉर्क में चाहते हैं, गांव में चाहते हैं कि शहर में चाहते हैं, जहां भगवान चाहते हैं वहीं मैं रहूंगा। आई एम अ पपेट इन योर हैंड, मेक मी डांस, मेक मी डांस। श्री प्रभुपाद अपनी प्रार्थना में लिखते हैं, नचाओ 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 से मते, मैं आपके हाथ में कठपुतली हूं, जैसे आप नचाना चाहो वैसे नाच। ये चेतना कैसे आएगी? ये चेतना तब आएगी जब हमारा नाम जब अच्छा होगा। अभी मेरे ख्याल से समय हो रहा है तो मैं यहीं पर अंत करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जैसे शाश्वत प्रभु जी को प्रॉमिस किया कि हम 2-3 दिन नाम जप पे क्लास लेंगे, नहीं अच्छा टॉपिक रहेगा, या चैतन्य चरितामृत पर। भागवत मुझे उतना अच्छा आता नहीं है, भागवत के लिए दूसरे भक्त भी अच्छा बोल सकते हैं, लेकिन नाम जप पे थोड़ा मुझे थोड़ा, जो भी प्रभुपाद के बुक्स में बताया गया नाम जप के बारे में उस पर ध्यान करना। और एसेंशियली प्रभुपाद इस बात पर जोर देते हैं कि हर एक शब्द का उच्चारण करें। कई बार हम जप कर रहे होते हैं और थोड़ा फास्ट हो जाता है, हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, तो राजधानी जपा बोलते हैं ना, क्योंकि राजधानी सब स्टेशन पे नहीं रुकता, तो हरे कृष्णा राम राम हरे हरे ना। और आपको आश्चर्य होगा, मैं किसी और के बारे में नहीं बोल रहा जो आपके सामने बैठा है, मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले 2006 में मेरा एक मेजर हार्ट सर्जरी हुआ था, हार्ट कार्डियक ऑपरेशन हुआ था, पेरिकार्डियक एफ्यूजन हो गया था, जो हार्ट के इलाके में बहुत सारा टॉक्सिक पदार्थ जम गए थे। डॉक्टर ने बोला था ज्यादा 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते, अगर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसके उस समय जब मेरा ऑपरेशन हुआ, भगवान की दया से वैष्णवों के और गुरुदेव के आशीर्वाद से सब ठीक हो गया। जब मैं लौट के आया तो मेरे को मेरे गुरु महाराज ने बताया कि देखो ये तुम्हारा नया जीवन है, आप ऐसा मानो कि आपको नया जीवन मिला, अभी तुम अपनी साधना को अच्छा करो, भक्ति अच्छी तरीके से करो। तो फिर मैंने तभी से पिछले 7 सालों से मैं हर प्रवचन में नाम के बारे में बोलता हूँ, कोई भी श्लोक हो कोई भी सेंटर हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर नाम जब अच्छा होगा तो वैयक्तिक और संस्था की और पूरे देश की और पूरे ब्रह्मांड को कल्याण होगा। तो मैंने ऑपरेशन के बाद अपने जपा को रिकॉर्ड किया देखने के लिए, तो अलग अलग मंत्र निकल रहे हैं, कभी कभी हरे कृष्णा 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 हरे, कभी कभी हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, और हमारी स्पीड भी वेरी होती रहती है, कभी बहुत फास्ट हो जाता है कभी बहुत स्लो हो जाता है, और कई बार हम अटेंटिव नहीं होते। तो ऑपरेशन के बाद मैंने प्रयास किया अपने जप को थोड़ा सुधारने का, फिर मैं डॉक्टर से मिलने गया, वो डॉक्टर जिसने ऑपरेशन किया उसका नाम है डॉक्टर भट्टाचार्य, पूरे भारत में नंबर 1 है वो ऑपरेशन करने में भी और फीस में भी पैसे में भी, लाखों रुपए लगते हैं एक ऑपरेशन। मेरे लिए थोड़ा कंसेशन किया था तो भी 3.5 लाख था कंसेशन, तो बहुत बहुत अमीर डॉक्टर। तो मैं उससे मिलने के लिए गया, ऑपरेशन के बाद स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मैंने सोचा इसने मेरा ऑपरेशन किया तभी मुझे भी इसका करना चाहिए स्पिरिचुअल ऑपरेशन, तो मैं उसके पास गया, मैं उससे बात करने का नाम है डॉक्टर भट्टाचार्य। मैं उसे कहने लगा, डॉक्टर साहब अभी कैसे बताऊं कि जब करना चाहिए, मृत्यु आ रही है, किसी को बोलना भी डर लगता है। तो उसके कलीग हैं वही डॉक्टर के एक सेम, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है पूरे भारत में फेमस, ऐसी और एक हार्ट स्पेशलिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर नीतू मानके, वो दोनों कलीग्स है, कलीग मतलब एक साथ एक ही फील्ड में कॉम्पिटिटर है, स्पर्धा है दोनों में आपस में। तो 2006 में मेरे ऑपरेशन होने के 1-2 साल पहले डॉक्टर नीतू मानके जो हार्ट सर्जन थे उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी, ये मेरे बात करने के 2 साल पहले हो चुका था। तो मैं डॉक्टर भट्टाचार्य को बोलने लगा, देखो तुम्हारे एक कलीग हैं डॉक्टर नीतू मान के, आपको मालूम होगा कि 2 साल पहले उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब मैं इनडायरेक्टली हिंट कर रहा था कि आपकी भी मृत्यु आ सकती है, अभी कैसे डायरेक्टली बोलूं। तो बहुत गंभीर हो गए, वो अच्छे डॉक्टर थे एक्चुअली, बंगाली फैमिली से है, रिस्पेक्टफुल। वो डॉक्टर है, उसकी पत्नी डॉक्टर है, बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, बेटी डॉक्टर है, दामाद डॉक्टर है, डॉक्टर भक्त समाज है ना पूरा पूरा, सभी डॉक्टर। तो ये मैं इसे बातचीत करने लगा तो बहुत गंभीर हो गए, बोले यस आई नो, मुझे मालूम है वो डॉक्टर मान के। वो कार में जा रहे थे अपने असिस्टेंट के साथ और कार में उनको हार्ट स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है। जैसे बेहोश हो गए, बेहोश होते में बोले कि एक ही व्यक्ति मेरे प्राण को बचा सकता है, एक ही व्यक्ति मेरे जीवन को बचा सकता है और वो है डॉक्टर भट्टाचार्य। फिर सब लोग मेरे पास लेकर आए उनको बेहोश अवस्था में, मैंने बहुत प्रयास किया, पेसमेकर में जो आर्टिफिशियल लगाया जाता वो लगाने का प्रयास किया, लेकिन सब विफल हो गया और अंत में मृत्यु हो गई। तो मैं मन में सोच रहा था अगर वो बोलता सिर्फ एक ही व्यक्ति मुझे बचा सकते हैं जगन्नाथ तो कितना अच्छा होता, वो डॉक्टरों पर भरोसा कर। तो इस तरह से बताने के बाद वो बहुत नम्र हो गए और बोले आप बताइए क्या मुझे करना चाहिए। मैंने उसको महामंत्र दिया, माला लेके आया था, माला जब दी तो जैसे हालांकि 16 माला नहीं, 1 माला शुरू करने का वचन दिया तो बहुत रिस्पेक्टफुली, जैसे कोई हाथ जोड़ के दीक्षा के समय लेते हैं, ऐसे झुक के उसने माला ली। और बाद में मैं मिला नहीं क्योंकि मेरा फिर पिछले 6 साल से मैं घूमता रहता हूँ, मैं बाहर बम्बई में महीने में 1-2 दिन ही आता हूँ। लेकिन उसने फिर चेक लिख के दिया, 10,000 रुपये मंदिर को दान दिया, थोड़ी सेवा थी। लेकिन मैं घटना इसलिए बता रहा हूँ कि हमें सबको जानना चाहिए कि हमें जप में पूर्णता प्राप्त करनी है और समय बहुत जल्दी बीतता जा रहा है। एक बार 60 या 70 उम्र हो गई तो फिर सुधार करना मुश्किल है। अभी पिछले साल ही मेरे 50 साल पूरे हो गए उम्र के, तो हमारे एक सेलिब्रेशन करते हैं लोग, केक लेकर आते हैं, प्रभु जी अभी 50 ईयर्स हो गए। मैंने बोला इसका मतलब क्या है, हैप्पी बर्थडे टू यू, मृत्यु पास आ रही है ना, जितनी आपकी उम्र बढ़ रही है मतलब मृत्यु पास आ रही है। मूर्ख व्यक्ति मुख में आनंद लेगा, लेकिन अगर हम नाम जब अच्छा कर रहे हैं तो जैसे उम्र बढ़ रही है मतलब भगवान के करीब पहुंच रहे। तो अभी जब ये स्वास्थ्य अच्छा है, अभी से हमारा जब अगर अच्छा नहीं हो रहा तो मृत्यु के समय कैसे होगा। अभी अगर अच्छा करोगे तो कुछ चांस है नहीं, जैसे फाइनल एग्जाम होता है मार्च में या अप्रैल में, लेकिन हमारा स्कूल शुरू हो जाता है जून जुलाई में, तो 8-9 महीने क्यों स्कूल रखा जाता है, क्यों नहीं डायरेक्टली मार्च में स्कूल में एडमिशन लिया जाए। ये 8 महीने जब पढ़ाया जाता है उसकी परीक्षा होती है अप्रैल में, ऐसे ये मृत्यु है वो परीक्षा का समय है और अभी जो चल रहा है ये तैयारी का पीरियड है, प्रिपरेटरी लीव है। अभी अगर अच्छी तैयारी है हमारी, अगर हम हर एक मोती पे प्रभु के नाम को ले रहे हैं, और भक्ति सिद्धांत ठाकुर सीक्रेट बताते हैं, ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा है लेकिन प्रभु भक्ति ठाकुर के लेक्चर में, ये कैसे नाम जप में सब अपराध से दूर हो सकते हैं, अच्छा जप हो सकता है, सीक्रेट मैं आपको सेमिनार में बताऊंगा। क्या भी बताऊं क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत लोग आएंगे कि नहीं पता, सीक्रेट है। जैसे आप जप कर रहे हो माला के ऊपर, हर एक मोती के ऊपर स्पर्श करते हुए मन में ऐसे कल्पना करिए कि आप चैतन्य महाप्रभु के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं, गौरांग नित्यानंद के चरणों को स्पर्श कर हर एक मोती पे, और उनसे प्रार्थना करिए, गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि मेरा जप अच्छा हो, मेरा शुद्ध नाम चाहिए मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, मैं इस्कॉन में पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं पोजिशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं काली प्रसाद खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि मुझे शुद्ध भक्ति चाहिए। तो हर एक मंत्र पर ये प्रार्थना करते हुए कि कृष्ण ये गौर मेहता मेरे अपराध को दूर कर। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि नाम जप का मतलब है भगवान के लिए रोना तरसना, वन शुड बेग फॉर मर्सी, भिक्षा मांगना। मुंबई में आप जाएंगे तो आपको भिक्षुक कैसे बनना है बहुत सीखने को मिलता है। आप कार में जा रहे हैं और कोई विंडो बोले फिर नहीं चाहिए, फिर इधर से आ जाएगा, फिर आप 3 बार नहीं बोलते हैं मैंने कुछ तो दो आपसे कहे चलो नहीं, भिखारी बनने के लिए भी दृढ़ निश्चय होना चाहिए, चाहिए कोर्स चाहिए, साधारण व्यक्ति नहीं बन सकते। इंजीनियर बनना डॉक्टर बनना तो इजी है, लेकिन भिखारी बनना और मुश्किल है। सिर्फ नम्र व्यक्ति ही भिखारी बन सकता है। ऑफकोर्स आजकल प्रोफेशनल भिखारी होते हैं, कई बार लोग मकान में रहते हैं एसी कमरे में होते हैं और फिर भिखारी के कपड़े पहन के ऑफिस में जाते हैं, मतलब पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर शाम को फिर पैंट शर्ट पहन लेते हैं। देखा आपने, ये प्रोफेशन भी है बेगर्स का, बहुत सारे मुंबई में ऐसे एक ग्रुप है। लेकिन मैं वो भिखारी नहीं बोल रहा, मैं वो भिखारी बोल रहा हूँ जिनको वास्तव में पैसे की गर्ज है। जैसे निर्जल एकादशी के बाद ना, इस बार कभी कभी था 20 जून को था ना निर्जल एकादशी, तो निर्जल के बाद आप 21 तारीख को सुबह व्रत तोड़ने वाले हैं तो कैसे पानी के लिए तरसते हैं, है ना। वृंदावन में 5:25 समय था, आप थे तो वृंदावन बात है, और यहाँ पर शायद 5:40 था, 15 मिनट कम था वृंदावन, इसलिए मैं वृंदावन गया था व्रत रखने के लिए, 15 मिनट कम फास्टिंग करना पड़ेगा। तो पूरा दिन जप करे थे। हमारे वृंदावन के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रभु जी बहुत दयालु थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे तो उन्होंने ऑफिस का चाबी दिया, तो एसी लगा के सब डिवोटीज जप कर रहे थे, पंचगढ़ प्रभु जी ऑफिस में जप कर रहे थे, सब डिवोटी जप कर रहे थे पूरा दिन। नेक्स्ट डे तो फिर कमजोरी, रात को नींद भी नहीं आती, प्रसाद के विरह में नींद कैसे आएगी, है ना। तो फिर सुबह उठने के बाद मंगल आरती हुई, मंगल आरती में अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर बाहर महाप्रसाद बांटा जाएगा, है ना, वहाँ बांटते हैं, और फिर यहाँ पे वो प्रसाद हॉल में अदरक पानी नींबू पानी सब मिलेगा, और स्पेशल जैसे मैं थोड़ा सीनियर हूँ तो हमारे लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया, 4-5 लोग बैठे थे, और मंगल आरती के बाद 5:10 पे हम बैठ गए प्रसाद के पास में, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, राम, राम। ये घड़ी बहुत धीरे चल रही, क्या बात है, हरे कृष्ण कृष्ण एकदम विरह महसूस हो रहा है ना। और बाद में जस्ट 5:25 में पानी पीने गए जुड़े, प्रभु जी ये घड़ी 5 मिनट आगे है। ये 10 मिनट तक मैंने लिया नहीं, है ना। कहानी क्यों बता रहा हूं कि ऐसे तरसना चाहिए भगवान के नाम के लिए, नहीं जैसे कोई व्यक्ति बहुत भूखा हो, अब उसको गुलाब के फ्रेश गुलाब की माला पहना दो तो उसको खुशी होगी, अब उसको चंदन दे दो, नहीं उसको वही चाहिए, ऐसे भगवान के नाम के लिए तरसना होगा। इसलिए बोलते हैं लाखों में कोई एक साधु सच्चा संत बनता है, भगवे कपड़े बहुत लोग पहन लेते हैं लेकिन सच्चा संत बनना बड़ी चीज है। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने इतने सारे मंदिर बनाए इस्कॉन में, अगर एक शुद्ध भक्ति बन गया तो मेरा मिशन सफल है, मैं सारे प्रॉपर्टी बेचने को तैयार हूं अगर एक शुद्ध भक्त बन गया। क्या होता है इस्कॉन में, होता है कि पहले हम आते हैं बहुत सिंसियरली, बहुत रिस्पेक्ट होता है, फिर 1-2 साल बाद हम जानते हैं, 5 साल बाद हम सोचते हैं मैं भी सीनियर हूं, फिर हम दोष देखने लगते हैं, ये व्यक्ति अच्छा जप कर रहे लेकिन कल रात को देखा मैंने वो मिठाई चुरा रहा था, ये भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है लेकिन मैंने देखा है ये बहुत ज्यादा प्रसाद खाता है, सब में दोष दृष्टि पैदा हो जाती है, इससे हमारे स्वयं की साधना नष्ट हो जाती और फिर हम दूसरी चीजों में फंस जाते। जो पहले आने पे एक तरलता थी, एक उत्सुकता थी, एक रुदन की भावना थी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, थोड़े समय बाद वो चली जाती, तो फिर कंपटीशन होने लगता है आपस में, कौन ज्यादा मंदिर बना रहा है, कौन ज्यादा फॉलोअर्स एकत्र कर रहा है, ये सब भौतिक विचार है। हमें सोचना चाहिए अगर कोई मेरे से ज्यादा कर रहा है तो अच्छा करने दो, भगवान का ही तो कार्य हो रहा है, मैं भी डॉक्टर हूं आप ही डॉक्टर है, मैंने 4 को दवाई दी आप 10 को दे दिए, पेशेंट दोनों ठीक हो गए, ऐसा सोचना चाहिए, टोटल 14 ठीक हो गए, ये नहीं मेरे से ही ठीक होना चाहिए, नहीं मेरे से ठीक नहीं होते उसे मर जाए ज्यादा अच्छा है, लेकिन दूसरे की दवाई नहीं ले। तो प्रीचर को ये सोचना नहीं चाहिए कि मेरे ही प्रोग्राम में लोग आए, मेरे ही मंदिर में आए, कहीं भी जाए प्रभुपाद की शरण में जाए, कहीं भी जाए कृष्ण की शरण में जाए, इवन दूसरे संप्रदाय में भी जाए, हमारे को आपत्ति नहीं अगर अच्छा संप्रदाय है कोई, तो कंपटीशन की भावना नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन तो होगा तो टेम्पल और टेम्पल में, फिर एक टेम्पल में भी 2 ब्रह्मचारियों में, 2 गृहस्थ में, गृहस्थ ब्रह्मचारी में, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे हमें बाहर से कोई डर नहीं है, बाहर से कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, हमें डर है तो अंदर से डर है, आपसी डर से बचना। तो बहुत सावधान रहना चाहिए, क्वालिटी जब कर। मेरा ये अनुभव है पूना में, रास बिहारी में, गिरधारी में, गोपीनाथ में, जो जो भक्त जब अच्छा करते हैं उनको स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम कम आते हैं या आते ही नहीं है। लेकिन जब जब अच्छा नहीं होता, जब साधना फिर ढीली पड़ जाती, चले आज मंगल आरती में नहीं भी आए तो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई अटेंडेंस सिस्टम है नहीं, है ना, या है तो भी वो जो किसी को बोल दूंगा वो साइन कर देगा मेरे लिए, तो फिर धीरे धीरे फिर लगता है, अरे देखो पिछले हफ्ते में एक बार नहीं गया मंगल आरती में कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी मैं भगवे कपड़े में हूँ, तो चलो दो बार नहीं जाएंगे, फिर तीन बार नहीं जाएंगे, फिर पता चला धीरे धीरे। माया क्या करती है, धीरे धीरे अटैक करती है, फिर पता ही नहीं चलता, सब कुछ भक्ति से पतन हो जाता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं आश्चर्य की बात ये नहीं है कि कौन जा रहा है, आश्चर्य की बात यह है कि कौन टिका हुआ है। तो मैं और आप हम सबकी जिम्मेदारी है इतनी अच्छी साधना होनी चाहिए, इतनी प्योरिटी होनी चाहिए, भगवान सब दे देंगे, पैसा, बिल्डिंग, ये मैन पावर, ये तो अपने आप आ जाएगा। जैसे भगवान ने अर्जुन को बोला, अर्जुन और दुर्योधन को, तुमको क्या चाहिए, एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी एक अक्षौणी, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और दुर्योधन क्या सोच रहा था, सेना मिल जाए तो अच्छा है, ये कृष्ण फालतू का क्या करेगा यहाँ पर, नहीं। और अर्जुन क्या सोच रहे थे, मुझे कृष्ण चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को बोला तुम मांगो पहले, दुर्योधन बोला नहीं नहीं सबसे पहले तो मैं आया था, वो फिर के पास बैठा था, भगवान बोले नहीं मैंने अर्जुन को देखा था। तो अर्जुन ने बोला मुझे आप ही चाहिए, चाहे आप अस्त्र नहीं उठा। और दुर्योधन खुश हो गया, अच्छा हो गया वो, उसको मालूम नहीं था यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय ध्रुवा नितिर मतिर ममा, जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय है, ये ट्रम्प कार्ड है, ये कार्ड डालने से विजय सफलता है, यहाँ पर कृष्ण है वहां पर सफलता। और अर्जुन हमारे इस्कॉन में अर्जुन है श्री प्रभुपाद सेनापति हमारे, और कृष्ण है ये महामंत्र के रूप में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जहाँ पर प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो कर रहे हैं और हरे कृष्ण मंत्र ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, पूर्ण सफलता, माया टच नहीं कर सकती। प्रभुपाद 1973 में बोले, उस समय 12-15 भक्त थे उस सेंटर में, बोले इतने भक्त भी रहे ना इस्कॉन में, खाली 10-12 भक्त, और सबको भगवान में श्रद्धा हो, भगवान में विश्वास हो, तो हम पूरी दुनिया को भक्त बना सकते हैं। कितने दिन में, महाभारत का जो 18 दिन में हुआ था, सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए क्या कि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं, भगवान मेरे साथ है। फिर जो भी तकलीफें आए, जो भी सेंटर डेवलप हुए हैं, तो पहले वो ऐसे ही थे, बहुत कम भक्त थे, किराए पे जगह ली थी, राधा रस बिहारी मंदिर में टिन शेड था, गोपीनाथ मंदिर जो यहाँ पर है मुंबई में चौपाटी में, वहां तो वो अनाथालय था, जब मंदिर का कमरा है बच्चों का प्लेग्राउंड था, और नीचे टिंकर बेल स्कूल और बोलास क्लासेस, नाम बोला लेकिन बोले नहीं थे, बहुत सारे तकलीफें, लेकिन जहां पे साधना अच्छी हुई सब सफलता हुई। ये फॉर्मूला है, ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस में होता है हाइड्रोजन क्लोरीन मिक्स किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना ही है, ऐसे फॉर्मूला है, अच्छी साधना है, सेवा भावना है, पूर्ण सफलता है, सब कुछ हो जाएगा, मंदिर भी बन जाएगा, हजारों की संख्या में कांग्रेगेशन आएगा, सैकड़ों ब्रह्मचारी भी हो जाएंगे, कॉलेज टीचिंग भी हो जाएगा, बस अगर हम सच्चे दिल से भगवान को पुकारते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ शास्त्र स्वरूप प्रभु को और आप सब भक्तों को मुझे सेवा का अवसर देने के लिए। कोई कमेंट्स आपको बोलना चाहते हैं? यस प्रभु,
बहुत बार मन में आता है कि